तुलसीदास जीवन और काव्य संसार पवन कुमार मिश्र। गोस्वामी तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति की सगुण राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी के महानतम कवियों में से एक तुलसीदास की अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ उनके द्वारा अवधि भाषा में रचित महाकाव्य रामचरितमानस है। तथापि उनकी अन्य रचनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। तुलसी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों में रचनाएं की। संस्कृत के प्रकांड पंडित होते हुए भी उन्होंने अवधि और ब्रज जैसी लोक भाषाओं को अपनी काव्य रचना का आधार बनाया। कवि पर स्वयं के जीवन के साथ साथ तत्कालीन युग और समाज का प्रभाव पड़ता है। यह बात तुलसी के संबंध में भी पूर्ण रूप से लागू होती है। जिस समय इस युग कवि का जन्म हुआ, देश की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिस्थितियाँ कुछ अच्छी न थीं। सभी प्रकार के मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा था। कवि ने स्वयं इस संबंध में अपने साहित्य कवितावली, दोहावली, मानस का उत्तरकांड आदि में संकेत किया है। तत्कालीन समय में देश में इस्लामी शासन था। अनेक शासक हिंदू धर्म, संस्कृति, समाज, तीज त्यौहार, व्रत, नेम नियम आदि को विकृत करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ तो अज्ञानतावश तथा कुछ विजातियों से अपना बचाव करने की चेष्टा में हिंदू समाज में अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ, भ्रष्ट रीति रिवाज, बाजाडम्बर और भ्रष्ट आचार आदि प्रविष्ट हो गए थे। वैदिक धर्म के लोप हो जाने से विभिन्न प्रकार के मत मतांतरों, संप्रदायों आदि का बोलबाला हो गया था। ये सभी आपस में एक दूसरे से द्वेष की भावना रखते थे। समाज में नारियों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। नारी केवल भोग का साधन मात्र बनकर रह गई थी। तुलसी नारी के कामुक स्वभाव की निंदा करते हैं। नारी से तुलसी घृणा करते हो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म एक तरह से उनके मर्यादावाद की धुरी है। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि मर्यादा जो हिंदू समाज की धुरी थी टूट गई थी और विभिन्न प्रकार के कष्टों से जनता त्राहिताई कर रही थी। जनश्रुतियों एवं उनके स्वयं के ग्रंथों से स्पष्ट है कि जन्म के कुछ समय बाद ही तुलसी अनाथ हो गए थे। उनका बचपन बहुत ही कष्टप्रद रहा। बाबा नरहरिदास, जो कि उनके गुरु भी थे, के सानिध्य में उनके जीवन को एक दिशा मिली। युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते वह वेद वेदांगों आदि में पारंगत हो गए थे। साथ ही उन्हें ईश्वर, वेद, धर्म, समाज का भी ज्ञान हुआ। उनका गृहस्थ जीवन भी बहुत थोड़े समय तक ही रहा। पत्नी की उलाहना के पश्चात वे राम की शरण में चले गए। काशी में लोक भाषा में राम कथा की रचना करने के कारण पंडित पुरोहितों व पंडितों से उनका बहुत अपमान किया। इस प्रकार तुलसी ने युगीन सामाजिक विसंगतियों एवं स्वयं के जीवन कष्टों को देखते हुए एक आदर्श समाज, आदर्श राज की परिकल्पना की, जो लौकिक द्वंद्वों से मुक्त तो नहीं था परंतु आदर्श प्राप्ति के निरंतर्य भाव के लिए प्रयासरत था। अन्य भक्तिकालीन कवियों कबीर, जायसी, सूर्य की ही भांति गोस्वामी तुलसीदास के भी प्रामाणिक जीवनी उपलब्ध नहीं होती। उनके जन्मस्थान, जन्म सम्मत एवं रचनाओं के बारे में पर्याप्त विवाद है। उनके जीवन चरित्र को जानने के लिए उनके स्वयं के कुछ ग्रंथों मानस, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे रामायण आदि के साथ ही बेनी माधव दास द्वारा रचित तुलसी चरित, इसके अतिरिक्त प्रियादास द्वारा रचित भक्तमाल में भी कुछ प्रसंग मिलते हैं। मूल गोसाई चरित्र में उनका जन्म संवत 1554 विक्रमी में माना गया है तथा मृत्यु 1680 में मानी गई है। दूसरी ओर पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने उनका जन्म संवत 1589 विक्रम संवत में माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इस मत को स्वीकार करते हैं। प्रचलित मत के अनुसार तुलसी का जन्म संवत 1589 अर्थात 1532 ईस्वी में हुआ तथा उनकी मृत्यु संवत 1680 अर्थात सन 1623 ईस्वी में हुई। जन्म संवत के समान ही तुलसी के जन्म स्थान के बारे में भी पर्याप्त विवाद है। पंडित गौरीशंकर द्विवेदी और पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने एटा जिले के सोरो नामक स्थान को तुलसी का जन्म स्थान माना है, जबकि शिव सिंह सेंगर एवं पंडित राम गुलाम द्विवेदी का मत है कि तुलसी का जन्म स्थान बांदा जिले का राजापुर ग्राम है, जो यमुना नदी के तट पर है। आचार्य शुक्ल ने भी तुलसी को राजापुर का निवासी बताया है। तुलसी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, परंतु कौन से ब्राह्मण थे इसमें विवाद है। आचार्य शुक्ल एवं ग्रियर्सन इन्हें सरयू पारायण मानते हैं और मिश्र बंधु कान्य कुब्ज। इनकी माँ का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्मा राम दुबे। जनश्रुति के अनुसार मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण अनिष्ट की आशंका से बालक तुलसी को माता पिता ने त्याग दिया। फिर भी माता पिता का शीघ्र ही देहावसान हो गया और दासी मुनिया ने तुलसी को पाला पोसा। 5 वर्ष की अवस्था होने पर वह भी चल बसी। अनाथ तुलसी दर दर भटकने को बाध्य हो गए। इनके गुरु बाबा नरहरिदास ने इनके जीवन को नई दिशा दी। वयस्क होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। रत्नावली के व्यंग से आहत होकर इन्होंने गृह त्याग किया था। तत्पश्चात ये राम के शरण में चले गए। तदनंतर बनारस में 16-17 वर्षों तक उन्होंने शेष सनातन की पाठशाला में अध्ययन किया और विविध शास्त्रों की जानकारी दी। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा है, तुलसीदास का महत्व बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार की तुलनात्मक उक्तियों का सहारा लिया है। बाबा दास ने उन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। स्मित ने उन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति माना था। दियर्शन ने इन्हें बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा था और यह तो बहुत लोगों ने बहुत बार कहा कि उनकी रामचरित मानस भारत की बाइबिल है। इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। रचनाएं। तुलसी की प्रामाणिक रचनाओं के विषय में विद्वान एकमत नहीं है। शिव सिंह सरोज में तुलसी की 19 रचनाओं का उल्लेख है तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने 12 रचनाओं को ही तुलसी की प्रामाणिक रचनाएं स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल ने भी जॉर्ज ग्रियर्सन के मत को प्रामाणिक मानकर तुलसी की 12 रचनाएं ही मानी हैं। मिश्र बंधुओं ने तुलसी की रचनाओं की संख्या 25 बताई है। तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान डॉक्टर उदय भानु सिंह ने उनकी रचनाओं को 3 वर्गों में बांटा है। प्रथम वर्ग में प्रामाणिक रचनाएं हैं, इनकी संख्या 12 है। दूसरे वर्ग में अर्ध प्रामाणिक रचनाएं हैं, इसमें मात्र 1 रचना आती है। तीसरे वर्ग में अप्रामाणिक रचनाएं आती हैं जिनकी संख्या 39 है। 12 प्रामाणिक रचनाओं में श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली अधिक महत्वपूर्ण हैं। शेष रचनाएं हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, भरव रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और रामलला नाचु। तुलसीदास द्वारा रचित तुलसी सत्सई को विद्वानों ने अर्ध प्रामाणिक माना है। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र को दर्शाने वाला श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें तुलसी ने भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, भक्ति और कवित्व का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य की रचना अवधि भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में की गई है। रचना कौशल, प्रबंध, पटुता एवं सहायता आदि सारे गुणों का समावेश मानस में है। इस महाकाव्य में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तुलसी को कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान थी। मानस के विभिन्न पात्रों के माध्यम से कवि ने पारिवारिक संबंधों का आदर्श रूप पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया। अन्य प्रमुख रचनाओं में विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और कवितावली ब्रजभाषा में लिखी गई है। विभिन्न मार्गों रागों में आबद्ध विनय पत्रिका तुलसी का सर्वोत्तम गीत काव्य है। कलिकाल के अत्याचारों से तुलसी रामराज की दुहाई देते हुए अपने दुख भरी जीवन गाथा को राम के दरबार में प्रार्थना पत्र या अर्जी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। गीतावली गीत प्रधान मुक्तक रचना है। इसमें राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तथा लव कुश के बाल चरित्र तक के विविध प्रसंगों का चित्रण है। इसमें वात्सल्य, श्रृंगार एवं करुण रस की उद्भावना कवि ने की है। दोहावली अपने सांग रूपकों के लिए प्रसिद्ध रचना है। इसमें कवि तुलसी द्वारा रचित कुल 573 दोहे हैं। इसकी विषय वस्तु राम नाम के महात्म्य, नीति, प्रेम का आदर्श, भक्ति का आदर्श आदि से संबंधित है। कवित्व शैली के माध्यम से रची गई रचना कवितावली एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है। इसे तुलसी की अंतिम रचना माना जाता है। यह ग्रंथ भी 7 कांडों में विभाजित है। इसके परिशिष्ट के रूप में हनुमान बाहुक संलग्न है। तुलसी की आत्मचरितात्मक उक्तियों की दृष्टि से एवं महामारी तथा कलयुग वर्णन के कारण कवितावली का स्थान अन्यतम है। इसमें राम के बाल रूप का भी सुंदर चित्रण हुआ है। शेष काव्य ग्रंथों में जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाचु, अवधि भाषा व लोकगीतात्मक छंदों में लिखित रचनाएं हैं। जानकी मंगल में विस्तारपूर्वक वैवाहिक मांगलिक कृत्यों का वर्णन है। पार्वती मंगल पार्वती प्रणय के आधार पर रचित एक सफल कवित्वपूर्ण खंड काव्य है। इन दोनों की शैली सरल एवं सरस है। रामाज्ञा प्रश्न को कुछ विद्वान दुहावली रामायण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राम की संपूर्ण कथा दोहों में वर्णित है। बरवे रामायण अवधि के प्रसिद्ध छंद बरवे में लिखित रामचरितात्मक लघु रचना है। अवधि भाषा के लोक छंद सोहर में लिखित रामलला नहचु एक अनुष्ठान है, जिसमें विवाह एवं यज्ञोपवीत के अवसर पर नखछेदन होता है। मुक्तक काव्य श्री कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने कृष्ण रचित को आधार बनाकर ब्रज भाषा में की है। इसमें कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं, गोपियों की श्रद्धा, अटूट विश्वास, आत्मनिष्ठा, अनन्यता आदि भावनाओं का मोहक और आकर्षक रूप में चित्रण हुआ है। दुहावली में कुछ दोहे वैराग्य संदीपनी के भी हैं। तुलसी साहित्य की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोग उसमें अपने ही जीवन की छवि पाता है। किसी भी समाज का विकास तभी संभव है जब उसकी विभिन्न संस्थाओं में कम से कम विरोध हो और वे सब मिलकर एक लक्ष्य की ओर उन्मुख हों। तुलसी ने मानव जीवन को उसकी पूर्णता में ग्रहण किया। उनकी महत्ता और समन्वयात्मक दृष्टि का आकलन करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं, तुलसीदास जी उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हें महानुभाव को। तुलसीदास जी की वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। संपूर्ण हिंदी साहित्य में तुलसीदास एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने इष्ट की आराधना में लोक की आराधना की, स्वांत सुखाय रचना में परिजन हिताय का कार्य किया।